नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी। उत्तराखंड में पहली बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 366 एलसी संवर्ग के शिक्षकों को अंतरमंडलीय स्थानांतरण दिया गया। राज्य में पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और उनकी बेटियों को ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल शाम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें 78 परियोजनाओं में 80,000 किसानों को शामिल किया जाएगा।
किसानों के खेती करने के तरीके में मेजर परिवर्तन आए, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस। तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसानों को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए।
राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 366 एलटी संवर्ग के शिक्षकों का अंतरमंडलीय स्थानांतरण कर दिया है। ये पहली बार है जब विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी को मंडल परिवर्तन का लाभ मिला है। इस फैसले पर शिक्षक संगठन और शिक्षकों में काफी प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि एलटी शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर शिक्षकों का मंडल स्थानांतरण किया गया है। उन्होंने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई है कि वो अपने नवीन कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कुमाऊं मंडल में 201 और गढ़वाल मंडल के 165 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया गया है। इन सभी शिक्षकों को 15 दिन के भीतर अपने वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानांतरण के बाद शिक्षक नवीन मंडल में कनिष्ठतम माने जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में खटीमा के कंजाबाग तिराहे पर 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और शौर्य का प्रतीक है, जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। उन्होंने कहा कि यह ध्वज आने वाले समय में खटीमा का एक प्रमुख आकर्षण और पर्यटकों के लिए एक विशेष केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्था का 25 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. कुमार इन दिनों बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने चमोली कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। स्वास्थ्य सचिव ने नंदप्रयाग, कमेड़ा और पागल नाला में अगले 15 से 20 दिनों के भीतर प्रोटेक्शन ऑफ वर्क और डामरीकरण कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जोगीधारा में सड़क किनारे मौजूद बड़े पत्थरों को एक हफ्ते में हटाने और हाथी पहाड़ के पास गोबियन वॉल का निर्माण जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
राज्य में पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और उनकी बेटियों को ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने स्वर्गीय पिताजी सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की है।
वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं इसकी यहाँ से घोषणा करता हूँ कि उनको ड्रोन दीदी बनाया जाएगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के अंदर योजना चल रही है। 60 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग एवं पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों एवं पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्रीधाम यात्रा भी कराई जाएगी, मैं यह भी घोषणा करता हूँ। और साथ में परमवीर चक्र विजेता को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1,50,00,000 रुपए का जो सम्मान है, वो सम्मान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्यधाम की तर्ज पर टनकपुर बनबसा और खटीमा क्षेत्र में भी भूमि उपलब्धता के अनुसार सैन्यधाम जैसा एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री को भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कल शाम मौसम ने अचानक से करवट ली है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। इस बदले मौसम का असर जनजीवन के साथ साथ कृषि पर भी पड़ा है। कई जिलों में फसलों के नुकसान और सड़क मार्गों के अवरुद्ध होने की खबरें सामने आई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और रुद्रनाथ जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। चमोली जिले में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गदेरे उफान पर आ गए और कई घरों में पानी घुस गया। ओलावृष्टि से माल्टा, आड़ू, सरसों और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। थराली बाजार में बरसाती गदेरे के उफान पर आने से 10 से ज्यादा वाहन मलबे में दब गए, 6 से ज्यादा दुकानें और पानी दुकानों में भर गया। इसके साथ ही देवाल मोटर मार्ग पर मलबा आने से आवाजाही बाधित हो गई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बारिश से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
इस कारण थराली बाजार में कुछ खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा आ गया गदेरे से, जिसमें कोई भी व्यक्ति बैठे नहीं थे, तो उस मलबे से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया था और थराली ग्वालदम मार्ग में भी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हुआ था। राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पे पहुंचकर सभी मशीनरी को मोबिलाइज करते हुए अब रास्तों को खुलवा दिया, मार्ग सुचारू है।
वहीं उत्तरकाशी जिले में दोपहर बाद बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे टकनौर और यमुना घाटी में से बाड़ू, खुमानी, पुलम, मटर, बीन्स और टमाटर जैसी नकदी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मनेरी बांध के पास अतिवृष्टि से गंगोत्री राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया और मार्ग करीब एक घंटे तक बंद रहा, जिसे बाद में बीआरओ की मदद से खोल दिया गया है। कुमाऊं मंडल में नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बिजली आपूर्ति जो है वो प्रभावित हुई। बागेश्वर जिले में भी ऊपरी इलाकों में बारिश और निचले इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। कपकोट विकासखंड के डोकटी गांव में भारी ओलावृष्टि से खेत और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। कच्चे मकान, उनकी छतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। वहीं टिहरी जिले में भी दोपहर बाद बारिश हुई। भिलंगना और जाखणीधार ब्लॉक में ओलावृष्टि से गेहूं, मसूर और अन्य फलों की फसलें काफी प्रभावित हुई। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश के चलते जंगलों में लगी आग पर भी काबू पाया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय द्वारा देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में केंद्र और राज्य के बीच संवाद के नए आयाम स्थापित किए गए। शिविर में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 19 राज्यों के विभागीय मंत्री भी शामिल रहे। सहभागिता, सुझाव और सहयोग की दृष्टि से यह शिविर अत्यंत सफल और प्रभावशाली रहा। अब तक दिल्ली और आगरा जैसे शहरों में आयोजित चिंतन शिविर की तुलना में देहरादून का आयोजन कई मायनों में विशेष रहा है। जहां पिछले वर्ष आगरा में केवल 8 राज्यों के मंत्री पहुंचे थे, वहीं इस बार 19 राज्यों के मंत्री देहरादून पहुंचे, जो केंद्र सरकार की पहल के प्रति राज्यों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत 12 पृष्ठीय नशा मुक्ति अभियान कैलेंडर भी चर्चा का विषय बना रहा। इस विशेष रूप से अल्मोड़ा समेत राज्य भर में चलाए गए अभियानों का विवरण दिया गया है, जिससे केंद्रीय मंत्रियों ने खूब सराहा। और एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। खटीमा में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कि उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेता को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में आपदा के दौरान मददगार साबित होंगे सामुदायिक रेडियो केंद्र। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है कि आपदा के समय इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप होने की स्थिति में सूचनाओं के आदान प्रदान में सामुदायिक रेडियो केंद्र सहायक होंगे। राजभवन में जनमिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खबर के शीर्षक में अमर उजाला लिखता है कि राज्यपाल ने पेंशन और जमीन संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की 2 मई से शुरुआत होगी। दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ लिखता है कि 30 अप्रैल से यात्रियों को धारचूला से इनर लाइन परमिट जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी। उत्तराखंड में पहली बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 366 LT संवर्ग के शिक्षकों का अंतरमंडलीय स्थानांतरण किया गया। राज्य में पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और उनकी बेटियों को ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल शाम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि और बागवानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।